ये आकाशवाणी है। अब आप करिश्मा राय से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन करेंगे। यह देश का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो है। इसका विषय है सीमाओं से परे भविष्य की ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला का सह निर्माण। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य टिकाऊ और अत्याधुनिक तकनीकी प्रगति पर जोर देते हुए ऑटोमोटिव और मोबिलिटी क्षेत्र में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना है। सरकार ने कल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होने वाला है और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि आयोग के लिए एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति शीघ्र ही की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के फैसले से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा और उपभोग को बढ़ावा मिलेगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की, जो एक विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड TLP की स्थापना को स्वीकृति दे दी। इस TLP परियोजना से इसरो की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण वाहनों के लिए श्रीहरिकोटा में बुनियादी ढांचे की स्थापना पर बल मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल स्पेडेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों की डॉकिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि की प्रशंसा करते हुए इसरो के वैज्ञानिकों और उपग्रहों की अंतरिक्ष डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए अंतरिक्ष दल को बधाई दी है। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शानमुगरत्नम ने कल शाम नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की गई। सिंगापुर के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात की। सिंगापुर के राष्ट्रपति भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है। कांग्रेस ने भी 5 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को मतगणना होगी। दिल्ली विधानसभा के 70 सीटों में से बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने शेष 2 सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के घटक दलों जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए छोड़ दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 प्रदान करेंगे। विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक में दोहरी पदक विजेता मनु भाकर, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान करेंगे। 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से लक्षद्वीप की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। पदभार संभालने के बाद उपराष्ट्रपति को की केंद्र शासित प्रदेश की यह पहली यात्रा होगी और इस दौरान श्री धनखड़ जन समारोह में शामिल होंगे और विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजधानी में लागू आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने के मामलों में दिल्ली पुलिस ने अभी तक 215 मामले दर्ज किए हैं। वहीं 139 गैर लाइसेंसी हथियार, 23,400 लीटर से ज्यादा शराब, 13 करोड़ रुपए के लगभग 60 किलोग्राम मादक पदार्थ, 1 करोड़ 46 लाख से अधिक की नकदी जब्त की है। खो खो विश्व कप 2025 में भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने ग्रुप चरण के मैचों में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली और अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान भी हासिल किया है। मेजबान भारतीय पुरुष टीम ने कल इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भूटान पर 71-32 से शानदार जीत दर्ज की। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।